نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے دشمن ہے تمہارے لیے فَحْذَرُوْهُمْ بس ہوشیار رہو ان سے. اب یہاں پہ دو رشتوں کا جو انسان کے بہت ہی قریبی رشتے ہیں ان کو مینشن کر کے فرمایا گیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار ہیں. اب ان رشتوں کو تو انسان سب سے قریبی اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے رشتے سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبت خود ڈالی ہوئی ہے. یہ ایک فطری محبت ہے انسان کی, ایسی نہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. مگر فرمایا کیا کہ ان سے ہوشیار رہو. وجہ کیا ہے ہوشیار رہنے کی؟ کس لیے؟ کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. دشمنی کس چیز کی دشمنی کرتے ہیں؟ ان کی دشمنی کیا ہے؟ اصل میں سب سے زیادہ یہ رشتے جو ہے نا انسان کے نیک کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور انسان ان کی وجہ سے دین کی خاطر قربانی نہیں دے پاتا ان رشتوں کی وجہ سے. اس آیت کے پیچھے ویسے تو جو پس منظر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر اپنے گھر والوں کی محبت نے ان کو ہجرت سے روک دیا تھا. تو جب بعد میں جب اسلام خوب پھیل گیا تب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, دیکھا کہ جو ان سے پہلے جو ہجرت کر کے آ گئے ہوئے تھے انہوں نے تو بہت زیادہ دین کا علم سیکھ لیا ہوا تھا. اب ان کے جی میں آیا کہ اپنے بچوں کو سزا دیں کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں ہجرت کر پائے. سمجھائی نا, ہجرت انہوں نے کرنی تھی لیکن مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور اب ان کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ ان دیکھو یہ ہمارے بیوی بچوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے عوف بن مالک, ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان کا واقعہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں موجود تھے اور جب کسی غزوے میں جانے کا موقع آتا, جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتے تو ان کے بیوی بچے فریاد کرنے لگتے, رونے دھونے لگتے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اب یہ ان کی فریاد سے اتنے متاثر ہوتے کہ رک ہی جایا کرتے تھے, پھر جاتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے یہ رشتے جو ہیں نا ان میں سے بعض کا بھی یہ دیکھ لیں, سمجھ لیں نا یہاں پہ ہے نا من ازواجکم, تمہاری بیوی بچوں میں سے, یعنی سارے نہیں ان میں سے بعض. کیونکہ دیکھیں بیوی بچوں میں تو ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی بھی ہوتی ہیں, بچوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے بھی ہوتے. تو سارے نہیں ہوتے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اور پھر اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے ان کا یہاں پہ کہ یہ پوٹینشیل ڈینجر ہیں تمہارے لیے, یعنی ہر وقت ان سے چوکنا رہو. یہ نہیں ہے کسی وقت بھی ان سے آپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ الرٹ نہ رہے, کیونکہ یہ کسی وقت بھی تمہاری آخرت برباد کر سکتے ہیں, تمہیں غفلت میں ڈال سکتے ہیں. تو ان سے تم ہوشیار رہو. اللہ نے محبت تو رکھی ہے, ایک فطری محبت ہے, ان سے محبت کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا کہ یہ پیارے رشتے کہیں تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کسی اور کی سنے نہ سنے مگر یہ رشتے ایسے ہیں کہ انسان بہت جلدی ان کے اس میں آ کے نا محبت میں تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان ایسی چیزیں جو وہ خود کرنا نہیں چاہتا, کوئی اللہ کی نافرمانی کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت دفعہ دیکھیں لوگوں سے آپ نے سنا ہو کہتے ہوئے کہ کیا کریں, بچے مجبور کرتے ہیں, بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے. تو اب وہ بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارے دشمن ہیں, تم ہوشیار رہو, یہ تو تمہاری آخرت برباد کر دیں گے. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ है नादान आदमी, उससे बड़ा कोई नहीं है जिसने किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखरत गंवा दी। यार इसकी दुनिया बन जाए, ये खुश हो जाए, उसके लिए अपनी आखरत कुर्बान कर दी, अपनी आखरत बर्बाद कर ली। तो ये तुम्हारे इस लिहाज से तुम्हारे दुश्मन है। अब गैरों की दुश्मनी को तो इंसान फौरन पहचान लेता है कि भाई हाँ फलां मैंने मेरे खिलाफ बात की, वो मेरा दुश्मन है। लेकिन इन रिश्तों को, प्यारे रिश्तों को कभी इंसान दुश्मन समझता है भला? अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बात ना की हो तो इंसान कभी भी ना सोचे कि ये कोई दुश्मन हो सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इनकी दुश्मन ये तुम्हारे हैं, और एक कैसी दुश्मनी है इनकी जो तुम्हारे दीन से में तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है कि किसी की आखरत खराब हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए आग या जहन्नुम की आग में इंसान चला जाए, अजाब में चला जाए, इससे बड़ी क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो दुश्मनी है ना, लेकिन इस दुश्मनी को इंसान पहचानता नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बतें जिता के, खलूस दिखा के अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने को कहते हैं। तो जब ऐसा कभी मौका आए, औलाद मजबूर करें या जौज मजबूर करें, तो याद रखें आदुवन लकुम, दुश्मन है तुम्हारे। बहुत, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कही गई है यहाँ पे, छोटी मोटे काम ये बात नहीं है। तो क्योंकि इंसान देखें बाज दफा दीन में आगे बढ़ने की कोशिशें करता है, लेकिन ये रिश्ते पीछे खींच लेते हैं, और इंसान उसमें फिर डिप्रेस भी होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फिर वो मतलब बहुत गमजदा भी होते हैं, तो फिर उसमें एक्सट्रीम रिएक्शंस भी शो करते हैं, घर भी कई दफा खराब हो जाते हैं, घरों का सुकून चला जाता है। लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं जिनको छोड़ना भी नहीं है, इनके हकूक भी अदा करने हैं, और दीन के रास्ते पे भी आपको चलना है, दोनों ही काम करने हैं। देखिए समझ लें, ऐसे है कि कांटों भरा रास्ता है, कांटों से भी बचना है और रास्ता तय भी करना है, मंजिल पे भी पहुंचना, ये बिल्कुल मिसाल समझ लें। क्योंकि इनको छोड़े भी कोई चारा नहीं है और कांटों से उलझना भी नहीं है। फहदरूहुम यानी इन बच के रहो इनसे, होशियार रहो इनसे। और ये याद रखें, जो भी लोग बहुत बेचारे अपनी मुश्किलात बताते रहते हैं, वो ये याद रखें कि 90% ऐसे लोग होते हैं कि उनके घर वाले उनके साथ सपोर्टिव नहीं होते, दीन के रास्ते में मुआविन नहीं होते। बहुत ही कोई खुश नसीब ही होगा जिसके बच्चे और हस्बैंड और सभी इतने उसके दीन में मददगार हों और उसको इनकरेज करने वाले हों। सपोर्ट तो छोड़ें, सपोर्ट तो दूर की बात है, उल्टा ताने भी मिलते हैं, उल्टा अजीबो गरीब बातें भी सुनने को मिलती हैं, बहुत ऐसी कभी कभी तकलीफ दे बातें सुनने को मिलती हैं कि इंसान इंतहाई गमगीन हो जाता है और सोचता है कि मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं। लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई सपोर्ट मिली थी? क्या क्या नहीं उनको सुनना पड़ा अपने बाप से, उनका क्या रिएक्शन आगे से होता था, और बाप की कमेंट्स देखेंगे क्या होते थे। नूह अलैहिस्सलाम को देखें, बेटा है, लेकिन देखें बेटे की भी सपोर्ट नहीं, औलाद की सपोर्ट है ही नहीं, बीवी की भी नहीं उनको सपोर्ट मिली थी। लूत अलैहिस्सलाम को देखें, शरीके हयात, अपनी बीवी, अपनी घर की औरत है, और वो ही उनके खिलाफ है। तो पैगंबरों के भी जिंदगी के देखें तो उनको सपोर्ट नहीं मिली अपने घर वालों की तरफ से, ये बहुत मुआविन हो, बहुत उनको एनकरेज करने वाले हों, बहुत नहीं, उन्होंने भी ऐसे हालात देखे। फिर आप देखें सहाबा कराम को, उनकी तो जिंदगियां ही ऐसी थी कि घर के अंदर अगर एक ईमान ले आया है तो दूसरा बिल्कुल ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। एक ही घर में बाप और बेटा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, एक ही घर में शौहर और बीवी दोनों के अकीदे मुख्तलिफ हो गए थे। यही तो वो फिर काफिर कहते थे कि इसने तो आके घर घर दुश्मनियां डाल दी हैं। तो सोचेंगे कितने मुश्किल हालात उन्होंने झेले और दीन को नहीं लेकिन छोड़ा। यही तो इम्तिहान है। और इन्हीं हालात में ये आयात उतरी है कि देखो ये तुम्हारे दुश्मन है, कहीं तुम इनकी मोहब्बत में फिसल ना जाना, फिसलना नहीं है, सारे जमाने को भी छोड़ना पड़े, अल्लाह को नहीं छोड़ना, उसके हुक्मों को नहीं तोड़ना। फिर इंसान जब ये सब देखता है ना कि हाय ये तो मेरे सपोर्टिव नहीं है, और ये तो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं और ऐसे हैं, तो फिर इंसान को गुस्सा आता है इनके पर। इंसान कहता है इन रिश्तों को ही तोड़ दूं, इनसे ही दूर हो जाऊं। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वा इन ताफू, अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर करो, जाने दो ना, बदला ना लो, इनकी तरफ से तकलीफें आए, इनकी तरफ से रुकावटें आए, इनकी तरफ से ज्यादतियां हों, इनकी तरफ से ताने मिलें, चुपती भी बातें सुनने को मिलें, तुम बदला ना लेना, वतस्फहू, और कसूर का एहसास भी ना होने देना। ये है सफा, कि इंसान दूसरे को ऐसा भी नहीं एहसास होने दे कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, ये नहीं कि बाद में ताने मारता रहे, एहसान जता रहे, देखो आपकी वजह से मैंने क्लास छोड़ी, आपकी वजह से मैंने ये किया, नहीं, कुछ भी नहीं, कसूर का एहसास भी ना होने दे। यानी तू तड़ाक करना या आर्ग्यूमेंट्स करना ये तो दूर की बात है, जिताना भी नहीं है। वह तगफिरू, और ढांप दो, अब चर्चे भी ना करते फिरो, अब इधर उधर भी ना, हाई ये हमारे घर वाले ऐसे हैं, हम ये नहीं करने देते, हम ये नहीं, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे तो बिल्कुल मेरे दीन के रास्ते की रुकावट है, इनकी वजह से नहीं मैं अपनी सही तरह से स्टडीज कर सकती, इनकी वजह से सारा, नहीं, तो फिर बख्श दो, ढांप दो। फ़ाइन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह भी तो गफूर रहीम है ना, अल्लाह भी तो तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर देता है ना, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तुम भी अपने घर वालों को माफ कर दो। अब ये तीन अल्फाज हैं, ताफू, तस्फहू, तगफिरू, तीन वर्ड्स हैं माफी के लिए। कुरान पाक में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन यहां पे इन तीनों को इकट्ठा लाया गया, तीन ताकीदें हो गई हैं, कितना ज्यादा फिर माफ करना चाहिए घर वालों को। अब वो तो नहीं वो बातें जानते ना जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तो उनसे दरगुजर का ही मामला करते रहना है, ये भी एक इम्तिहान है। और खास तौर पे औरतों के लिए तो इस तरह से है ना कि वो किसी के अंडर होती हैं, जाहिर है अपना उस तरह से जोर नहीं चला सकती जैसे मर्द चला सकते, तो औरत के लिए तो यही मैदान जिहाद है, इसी में उसने जिहाद करना है। तो चाहे ये जो दुश्मनियां हैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उसके खिलाफ महाजाराइयां करें, ये भी ये अच्छा, यहां पे ये नहीं कहा गया फिर इनकी मान लिया करो, ये ना कि या तो कहा जाना ना ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तो तुम्हें उल्टे रास्ते पे लगाएंगे, तुमने फिर इनकी माफ मान लिया करनी है, नहीं, होशियार रहना इनसे, बी अलर्ट, ये ना हो कि वो तुम्हें अल्लाह ही भुला दे। पिछले सूरह तुल मुनाफिकून में हमने पढ़ा है ना, ये ना तुम्हारे माल और औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से ही गाफिल कर दे, ये ना हो कि तुम्हें दूसरे रास्ते भी डाल दे, तुम भी एक दिन गुस्से में और कहो कि हाँ अच्छा मेरे हस्बैंड को तो हिजाब मेरा लेना पसंद ही नहीं है, बस ठीक है आज से मैं भी छोड़ रही हूँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं, अच्छा इनका मेरा पढ़ना नहीं पसंद, चलो ठीक है मैं भी नहीं पढ़ती, ठीक है यही चाहते हैं ये तो मैं भी यही करूंगी, नहीं, ताफू, तस्फहू, तगफिरू, इनके हकूक व फराइज भी अदा करने हैं, मगर साथ ही साथ दीन के रास्ते पे भी चलना है। कहीं पे इंसान के बच्चे भी ऐसे दुश्मन हो जाते हैं कि उनको भी नहीं पसंद आता कि माँ का पढ़ना सीखना या उनका कोई और दीन के उसके ऊपर अमल करना वो नहीं अच्छा समझते, तो वहां पे भी दरगुजर करना है। ये रिश्ते अल्लाह ताला ने मोहब्बत के बनाए हैं, मोहब्बत करो इनसे, लेकिन ये इसलिए नहीं बनाए कि इन रिश्तों को राजी करते करते इंसान अल्लाह से रिश्ता तोड़ दे, समझ आई? अपनी आखरत को इन रिश्तों के पीछे कुर्बान नहीं करना, इनकी मर्जियों के आगे हथियार नहीं डाल देने, ये क्या करें बच्चे ये कहते हैं, क्या करें बच्चों का ये हुक्म है, नहीं, फिर फरमाया। अच्छा एक और बात आपको बता दूं कि उलमा ने इसी बात से कहा है कि अगर घर वालों से कोई खिलाफे शरीयत काम हो जाए तो उनसे बेजार नहीं होना, उनसे बुग़ज़ नहीं रखना, उनके लिए बद्दुआ नहीं करना, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं करनी। और इसका ये भी मतलब है ताफ़ु तस्फ़हु तग़फ़िरु, कि मिसाल के तौर पे कोई बात है, कोई ऐसे आप उनको तन्बीह कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन अब वो हट नहीं रहे, वो उसी चीज़ के ऊपर मुज़िर हैं, तो हमेशा अपने घर वालों के साथ सख्ती और तशद्दुद का ना मामला किया जाए, जाने दिया जाए, कभी छोड़ भी दिया जाए, ठीक है। जैसे वो सहाबा कराम ने सोचा ना कि अब हम इनको बड़ी सख्त सजा देंगे, इनकी वजह से हम ना दीन के ऊपर वो हिजरत नहीं कर पाए, तो उनसे कहा कि नहीं आप छोड़ दो उनको, जाने दो, ठीक है। फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अब ये वही बात है सूरह मुनाफिकून में भी जो आई थी, माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। पहले आई जौज की बात, जौज की बात आई, अब माल और औलाद की बात भी आ गई, माल को भी बीच में शामिल कर दिया गया कि माल फितना है, यही तो तुम्हारा टेस्ट है। टेस्ट किस चीज का टेस्ट? सबसे ज्यादा टेस्ट इंसान का इन्हीं चीजों के जरिए तो होता है कि अब वो क्या करता है इनकी मोहब्बत में। माल से भी उसको बड़ी मोहब्बत होती है, औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होती है। ये आजमाइश बन जाते हैं इंसान के लिए, क्योंकि इनके पीछे इंसान वो काम कर देता है जो कि कभी शायद वो अकेला हो तो ना करे, माल उसके पास ना हो तो वो काम ना करे, औलाद ना हो तो ऐसे कामों में ना पड़े, मगर यही तो इसका टेस्ट है। ये अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए दिया है, जैसे मैंने आपको पिछली सूरत में भी बताया था, हम सोचते हैं ये इनाम है, इनाम नहीं, ये जिम्मेदारी है, इनाम नहीं, ये टेस्ट है, इसके जरिए से अल्लाह ताला आजमा रहा है, ये इम्तिहान के पर्चे हैं। आपका जैसे मैथ साइंस इंग्लिश पर्चे होते थे ना, इसी तरह एक पर्चा है माल और एक पर्चा है औलाद, ये आजमाइशें बनते हैं। आप देख लें इंसान इस माल के पीछे कहां कहां तक अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर जाता है, कहीं सूद खाता है, कहीं रिश्वतें लेता है, कहीं रिश्वतें देता है, कहीं इंसान कोई और हराम काम करता है, हराम कारोबार करता है, कहीं इस दौड़ में लग के इंसान अल्लाह की याद को भुला देता है, नमाजें उसकी जा रही हैं, उसकी और कई काम जा रहे हैं, लेकिन वो बस इसलिए कि बस जॉब है, बिजनेस है, ये है। अब माल बुत बन जाता है इंसान के लिए, और इसको इस बुत को इंसान पूजना शुरू हो जाता है, इसी माल की बुनियाद के ऊपर लोगों को परखता है, इसी माल की वजह से वो तकब्बुर करने लगता है, अकड़ने लगता है, इसी माल के मुकाबले करना शुरू हो जाता है, इसी माल से वो इसराफ करना शुरू हो जाता है, गलत जगहों पे लगाना शुरू कर देता है, हराम कामों में लगाना शुरू करता है। तो माल था तो अब उसने कॉन्सर्ट भी करवाया, माल था तो उसने शराब की बोतल भी खरीदी, माल था तो वो गलत जगहों पर भी पहुंच गया, माल था तो उसने जुआ भी खेला, माल ना होता तो वो ये इन इन सारी चीजों में ना पड़ता। माल एक टेस्ट बन जाता है, जब माल बहुत होता है ना इंसान के पास, या उसकी जेब भरी होती है, तो वो काम कर जाता है जो शायद खाली जेब के साथ ना करता। वो कहते ना भरा पेट शैतान का घर होता है, बड़े बूढ़े कहा करते थे, वो वाकई जब इंसान के पास माल आता है तो अब उसको खर्च भी तो उसने कहीं करना है, ऐसी ऐसी जगहों पर लगाता है, हालांकि इन चीजों का सवाल है, वो ऐसी जगहों पे माल को लगाता है जो अल्लाह ताला ने जायज नहीं की, तो अल्लाह उसको आजमाता है कि अब मैंने इसको माल दिया, अभी इसके साथ क्या करता है, टेस्ट कर दिया अल्लाह ताला ने उसका। हम माल को समझते हैं हाय माल आ गया, कितनी बड़ा इनाम मिल गया, हाय पे बढ़ गई तो कितना हो गया, मुझे यहां से नफा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, तो कितनी अच्छी बात है, उसके ऊपर हम मिठाइयां बांटते हैं और उसके ऊपर इतनी खुशी, ये नहीं पता कि टेस्ट हमारा और बढ़ गया, अल्लाह ताला और देख रहा है, दे के देख रहा है कि अब ये अब इसके सब इस पैसे के साथ क्या करता है, अब मेरे रास्ते में खर्च करता है कि नहीं, अब ये शुक्रगुजार बनता है कि नहीं, अब इसके अंदर आजजी आती है कि नहीं, अभी भी आजिज रहता है या नहीं रहता। तो देखिए माल इतना बड़ा फितना है, अब ये वो फितना नहीं जो उसको उर्दू में हम फितना कहते, फितना फसाद, फितना माना टेस्ट, और औलाद फितना है,
औलाद भी टेस्ट है। देखें, इंसान अपना सारा वक्त इस औलाद के पीछे जो है ना, अपनी जो जो अपना वक्त आखिरत के लिए लगाना चाहिए ना, वो भी वक्त इस औलाद को दे देता है। सारी भाग दौड़ उसकी 24 घंटे औलाद की खातिर हो जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारी कन्वर्सेशन क्या आती है? बच्चे 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 बच्चे, ये बच्चे वो बच्चे, ये कोई वक्त ऐसा नहीं निकलता जो बच्चों से फारिग होके इंसान अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हो जाए, कोई और हकूक भी अदा कर सके, कोई बैलेंस भी रख सके। हद तक कई खवातीन को देखा तो हस्बैंड के लिए भी टाइम नहीं निकालती कि नहीं, बच्चे बस बच्चे ही बच्चे, और उसकी वजह से उनके घरेलू ताल्लुकात भी शौहर के साथ भी खराब हो जाते, कि तो बस हर वक्त बच्चों में ही लगी रहती। तो औलाद भी एक टेस्ट बन जाता है। तो एक औरत सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पैदा हुई, उसने अपना हिसाब पहले देना है, और फिर बच्चों की मोहब्बत में इंसान किस किस तरह से ज्यादतियां करता है, जुल्म करता है, ये आप सोचें। अदल से काम नहीं लेता। आप ये इस छोटी सी मिसाल से देखें, आप देखें छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो दो बच्चे आपस में लड़ पड़ेंगे, एक बच्चे ने दूसरे पे ज्यादती की, तो वो जो ज्यादती करने वाला है बच्चा है, उसकी माँ अगर बैठी होगी तो वो कहेगी कि हाय बेटा कुछ ना करो, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो ऐसे नहीं करते। और अगर वो उस बच्चे की माँ होगी जिसको ऊपर ज्यादती की गई, तो फिर देखो वो आसमान सर पे उठा लेगी। छोटे से बच्चों की फाइट में देखें आप, इंसान अदल से काम नहीं लेता, इंसान ज्यादती करता है, जुल्म करता है, उसको लगता है मेरा बच्चा ही सबसे मजलूम है। छोटे छोटे बच्चों में इंसान ज्यादतियां करने शुरू होता है ना, तो बड़े होके भी क्या होता है। एक औरत के लिए जो उसकी बहू का काम है, वो अपनी बहू को डिफरेंट उसे एंगल से परखेगी, लेकिन बेटी को डिफरेंट से परखेगी। बेटी हमेशा बिचारी और मजलूम रहेगी, और बहू हमेशा जालिम और वो रहेगी। उसको क्या है ज्यादतियां, फिर आगे जाके ये है औलाद की मोहब्बत। इंसान अपनी औलाद की वजह से वो फर्क करता है, और वो ज्यादतियां करता है जो शायद अगर औलाद नहीं होती तो वो इस सिचुएशन में पड़ता ही नहीं। ये है उसके टेस्ट, ये है ट्रायल। अदलो इंसान इंसाफ से काम नहीं लेता। फिर अगर अपना बेटे का रिश्ता कहीं लेकर जाते तो तब सही बात नहीं बताते कि फिर कोई रिश्ता कैसे देगा। ये है ज्यादती। बेटे के पीछे इंसान किस तरह अदल और इंसाफ से बिल्कुल हट जाता है। इसी तरह इंसान कहता है आए बच्चे हैं ना, तो बच्चे ये मांगते हैं और ये मांगते हैं, तो अब क्या करें, बच्चों की मांगे तो पूरी करनी है। उसके लिए वो हराम भी कमाइयां करता है, उसके लिए वो झूठ भी बोलता है, उसके लिए वो लोगों को धोखा भी देता है, क्योंकि मेरे बच्चे का फायदा हो जाए। तो ये तो टेस्ट है, ये टेस्ट है। आप देखें, जब पहले पीछे बीवी की भी बात आई ना, तुम्हारे दुश्मन है, तो दीन के दुश्मन कैसे बनते हैं, बीवी है या बच्चे हैं। आप देखें कभी कभी आदमी बीवी की डिमांड होती है तो कहती है कि मुझे कोई सेट दिलवाएं, मेरी फलानी दोस्त के पास ये सेट है, मुझे तो कभी आपने कुछ लेके नहीं दिया, ऐसा किया, फलानी ने घर खरीद लिया, मुझे भी इतना बड़ा घर चाहिए, और मैं इतने अरसे से पाकिस्तान गई नहीं, उसको देखो कितने ट्रिप लगा चुकी है। अब वो आदमी क्या करेगा, हराम लेने पे मजबूर होगा ना, कि कैसे हमारे खर्चे चलें। अब जब हम ये कहते हैं ना हमारे खर्चे कैसे चलें, तो इस पीछे क्या है, हमने अपने मुंह इतने बड़े खोल लिए होते हैं कि अब हमारे खर्चे बंद ही नहीं होते। उसको पूरा करने के लिए आदमी एक मशीन बन जाता है, वो अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल है और हर चीज से गाफिल है। ये तुम्हारे दुश्मन बन गए ना तुम्हारे दीन के, यही तो तुम्हारे टेस्ट थे। बच्चे कहते हैं फलां के पास ये ब्रांड नेम है और फलां के पास ये गाड़ी है, हमारे पास तो है ही नहीं, और माँ रो रही है हाय मेरे बच्चे महरूम रह गए, ये तो इतने अरसे से वेकेशन पे ही नहीं गए, बाकी दोस्तों के बच्चे देखे वो फलानी जगह जा रहे हैं और फलानी जगह, और उनके पास ये चीजें हैं और उनके घर में तो यही है। तो इंसान आदमी जो है वो हराम कमाने पर मजबूर होगा या नहीं? ऐसे बच्चे और बीवी दुश्मन है, ये बच्चे ट्रायल हैं, टेस्ट है। अल्लाह ने तुम्हें इनसे टेस्ट किया है, माल दे के टेस्ट किया, औलाद दे के टेस्ट किया है। इनकी मोहब्बत में तुम अल्लाह को छोड़ देते हो, या फिर अल्लाह को याद रखते हो और इनकी मोहब्बत को पीछे कर देते हो। अल्लाह ताला ने जो फराइज तुम पे रखे हैं तुम उनसे गाफिल हो जाते हो, या मोहब्बत को उसकी हद में रखते हो और फराइज से गाफिल नहीं होते। ये इतना बड़ा फितना है कि इनकी मोहब्बत जो है ना वो इंसान को उसके आखरत का बेड़ा गर्क कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन मोहब्बतों को आगे नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की बात को आगे किया। उनमें एक मिसाल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज वो थे कि जब गली में से गुजरा करते थे ना, तो इनकी कपड़ों की खुशबू जो थी घरों में बैठे लोगों को पता चल जाता था जो तो उमर जो है ना गली से गुजरे, और इतना हुस्न जमाल था कि चेहरे पे आंख नहीं टिकती थी। ऐसी नखरे वाली चाल थी जो देखता था वो दंग रह जाता था। लंबी आबा होती थी, घिसटती भी जाती थी, इतने ज्यादा वो थे। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन बने तो फिर उस वक्त हाल क्या हो गया था कि वो वक्त भी आया कि ईद का दिन था, और ईद के दिन से एक दो दिन पहले की बात थी कि उनके छोटे बच्चे थे, रो रहे थे। कहने लगे, बच्चों क्यों रो रहे हो? बीवी ने कहा, ये बच्चे ही कह रहे हैं कि हमारे सारे दोस्तों ने नए नए कपड़े बनवा लिए ईद के लिए, हमारा बाप अमीरुल मोमिनीन है, हमारे कपड़े फटे हुए होते हैं, हमें भी तो कपड़े लेके दें। अरे तुम्हारे ने फरमाया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ? वजीफा लेते थे बैतुल माल से, ठीक है, तो वो उससे रोटी का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। बीवी ने कहा, अब ऐसा करें, बच्चों को कैसे समझाएं, हम खुद तो चलो सब्र कर लेते हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तो जाहिर है बच्चों पे तो इंसान अपना ईमान भी बेच देता है। तो कहने लगे कि ऐसा करें कि आप एक वजीफा एक महीना एडवांस ले लें, जैसे सैलरी एडवांस लेते हैं ना, आप एडवांस ले लें ताकि हम बच्चों के ईद के कपड़े बना सकें और बाकी हम खुद सब्र कर लेंगे। उन्होंने कहा ये ठीक है। अब अपना खादिम भेजा उन्होंने खजानची के पास कि एक महीने का एडवांस दे दिया जाए। तो उसने खजानची ने कहा, क्या आप मुझे जमानत देते हैं कि आप एक महीने जिंदा रहेंगे, जो आप मुसलमानों का माल लेना चाहते हैं? अगर आप मुझे जमानत देते हैं कि आप एक महीना जिंदा रहेंगे तो मैं बैतुल माल में से आपको दे देता हूँ वजीफा, और अगर नहीं जमानत दे सकते तो कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। इनकी चीख निकल गई इस बात पे। फरमाया, बच्चों से बच्चों सबर कर लो, जन्नत में ले लेना जाके, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। देखें, अल्लाह ताला के अमर को नहीं तोड़ा, बच्चों की ख्वाहिशात को तोड़ दिया। इनके 12 बेटे थे, जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनके साले थे मुस्लिमा बिन अब्दुल मुलिक, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपने तो बच्चों पे बड़ा जुल्म किया। तो फरमाने लगे कि मैं इनके लिए जो छोड़ के जा रहा हूँ वो 2 रुपए फी कस है, एक बच्चे को 2 रुपए मिलेगी। तो उसने कहा, आपने बच्चों के लिए बस इतना सा छोड़ा है, इससे वो क्या करेंगे, इनका तो कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, इनको जहर दे दिया गया था तो वो उसका असर होने लगा, तो कहने लगे मुझे बिठा दो। इनको बिठा दिया गया, कहने लगे मैंने इनको हराम कुछ नहीं खिलाया और हलाल मेरे पास था ही नहीं, तो मैं फिर क्या देता इनको, क्या इनके लिए जमा करता? वो उनके साले ने कहा, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, मेरी तरफ से आप बच्चों को ना तोहफतन दे दें। होते हैं ना रिश्तेदार जो कहते हैं कि भाई आप दे दें, हमारी तरफ से दे दें। कहने लगे, वादा करते हो? कहने लगा हाँ। कहते हैं, अच्छा फिर ऐसा करो, जहां जहां से तुमने लूट खसूट के जुल्म से रिश्वत से ये पैसा इकट्ठा किया ना, उन लोगों को वापस कर दो, मेरे बच्चों को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर कहा, मेरे बच्चों को बुलाओ। सबको बुला लिया। उसके बाद उनसे फरमान लगे, मेरे बेटो मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक ये था कि मैं तुम्हारे लिए दौलत जमा करता, हलाल होती हराम होती किसी तरह भी, लेकिन उसके बदले में मैं दोजख में जाता। दूसरा रास्ता ये था कि मैं तुम्हें तकवा सिखाता, अल्लाह से मांगना सिखाता और खुद जन्नत में जाता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप दोजख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हें हराम नहीं खिलाया, ना मैंने हराम जमा किया, मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाया तकवे वाला। जब कभी जरूरत हो मेरे अल्लाह से मांगना, मेरे अल्लाह का वादा है कि मैं नेकों का दोस्त हूं, नेकों का वली हूं। फिर अपने साले से कहा, मुसलमा अगर ये मेरे बेटे नेक रहे तो अल्लाह इन्हें जाया नहीं करेगा, और अगर ये नाफरमान हुए तो मुझे इनकी हलाकत का फिर कोई गम नहीं है। फिर इस जमीन और आसमान ने वो दिन भी देखा कि जो मुसलमा की औलादें थी ना, अल्लाह अकबर, जो एक जमाने के वो लोग थे कि ये इनके लिए इनके बाप 10-10 लाख दिरहम छोड़ के मरे थे, तो ये औलादें मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगा करती थी, और उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद, जिनके लिए दो दो रुपए फीकस छोड़ के वो गए थे, एक एक मजलिस में वो सौ सौ घोड़े अल्लाह के नाम पे खैरात किया करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, बेशक औलाद के लिए कुछ नहीं जमा किया, लेकिन कहा हराम से नहीं हमने करना, हलाल से। तो ये तो टेस्ट है, टेस्ट की पर्ची, हम इनके लिए कितना अपना ईमान भी बेच देते हैं। कहते हैं ईमान जाए तो जाए, मेरी औलाद की ख्वाहिश ना टूटे, मेरे बच्चे के एक आंसू अगर निकल आए कि मुझे ये गेम नहीं मिली, मुझे ये ब्रांड नहीं मिला, तो हमारा दिल पसीज जाता है, हाय कैसे पेट काट के भी इसको ला के दूं, हम क्यों नहीं ले सकते, हम कितना वावेला करते हैं। और माल के पीछे हम कैसे फरेफ्ता होते हैं, हलाल से है हराम से है हमें इसकी फिक्र ही नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल पैसा कमाया, हलाल हलाल याद रखे, हलाल पैसा कमाया लेकिन तकब्बुर के लिए, कि मैं लोगों में बड़ी बन जाऊं, अब उनका कमाई हलाल की है लेकिन तकब्बुर के लिए, औरों से ज्यादा जमा करने के लिए, हमारी सेविंग ज्यादा हो, अपनी शोशा के लिए ना, कयामत के दिन उसे अल्लाह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हलाल की बात करें, हराम की नहीं, हराम की नहीं अभी बात आई, लेकिन उसकी नीयत क्या है कि मैं औरों से ज्यादा बढ़ जाऊं, मैं जरा शोखियां मारूं, मेरा पर्स ऐसा, मेरी जूती ऐसी, मेरे कपड़े ऐसे, मैं ऐसे सब में नजर आऊं, सबसे ऊंची बन के जाऊं, अल्लाह के गुस्से का सामना पड़े करना पड़ेगा। और जिसने दुनिया हलाल कमाई अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए, सवाल से बचने के लिए, वो अल्लाह की बारगाह में इस तरह आएगा जैसे उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। ये के मोहताजी से बचाने के लिए, सवाल से बचने के लिए, के फकीरी से किसी के आगे हाथ फैलाने से, वो आएगा इस तरह के हलाल उसका कमाया हुआ काम आएगा। बाकी जिसने तकबर के लिए, कितनी नीयतें यही होती है ना, हम आगे बढ़ जाएं सबसे, हमारा सबसे ज्यादा अच्छा हो, हम ऐसे लगें, और हमारी शो, ये हमारे मुकाबले, हमारे तकब्बुर, हमारी बड़ाइयां, हलाल कमा के भी यही हाल होता है तो अल्लाह के गुस्से का सामना है। तो ये तो तुम्हारे लिए फितना है, ये टेस्ट है, इनके पीछे अल्लाह को ना भूलना, इनमें खो के अपनी आखरत बर्बाद ना करना, इनकी वजह से अदल से ना हट जाना, इनकी वजह से ज्यादतियां जुल्म ना करने लगना। आप देखें विरासतों के अंदर जो जुल्म होता है वो किस लिए सबसे ज्यादा होता है, हमारे बच्चों को मिल जाए, हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए, यही होता है ना, किस लिए इंसान हक मारता है दूसरों के, इसी वजह से ना, किस लिए इंसान बिजनेस में हेरा फेरियां करता है, मेरे बच्चों ने पढ़ना है, मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की शादियां, मेरे बच्चों का ये काम, कैसे होंगे वो अगर मैं रिश्वत ना लूं, कैसे होंगे ये अगर मैं सूद ना खाऊं, कैसे होंगे ये अगर कि मैं ये सारे हराम तरीके ना अपनाऊं, क्योंकि हलाल से तो हमारा गुजारा ही नहीं चलता। तो ये तुम्हारे लिए फितना है, यही तो है तुम्हारे टेस्ट, तुम टेस्ट को टेस्ट ही ना समझे आज तक, तो क्या उसमें पास हो गए। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, और जो अल्लाह के पास है ना अजर अजीम है, पता नहीं ये तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तो तुम्हारे काम आए भी या ना आए, लेकिन अगर इनको अल्लाह की खातिर तुमने लगाया, इनकी तरबियत ऐसी की, इनको ऐसा पाला पोसा, इनको ऐसे ही इस रास्ते पर अल्लाह के लगाया, तो ये तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह के पास अजर अजीम है। और अगर यही किया कि तुमने इनको अल्लाह का ना बनाया, तो ये तुम्हारे भी नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे भी नहीं बनेंगे। तो ये जिम्मेदारियां, इनका हिसाब देना पड़ेगा। इन मोहब्बतों में एक खतरा है, एक डेंजर है, इसलिए इनसे होशियार रहो तुम, और इनके पीछे तुम अल्लाह को ना भूलना। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये बहुत मुश्किल टेस्ट है, जो इसमें कामयाब हो गया, तो अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, अल्लाह के पास उसके लिए अजर अजीम है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।